कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
अरे मन अजब अला मारे ते बहुत बिगाड़े का मारे, हैरान हवानी जाता रे सिर पीटे ज्ञानी ज्ञाता रे, हैरान हवानी खेल रे सब अपने ही रंग में लरे, ते नौका नाम डबोई रे मन खाखी भड़ुआ धोई रे, धोई मन धोखेबाज धोही, ते नौका नाम डबोई रे मन खाखी भड़ुआ धोई रे, मन मार भी हंडम कर सूरे सतगुर साक्षी नहीं डर सूरे, अरे चढ़ले खेत लड़ो मैदाना रे तुझ मारूंगा सैताना रे, डिड की ढाल बनाऊ रे तन तत की तेग चलाऊ रे, काम अटारी के ऐचू रे काम कटारी ऐचू रे, दरबान भी हंगम खेचू रे, बुद्धि की बंदूक चलाऊ रे मैं चित की चकमक लाऊ रे। परमात्मा हमें समझा रहे हैं कि आपने इस काल रूपी मन से बचने के लिए हमारे ज्ञान का आधार सहारा लेना पड़ेगा। काम कटारी ऐ चूरे दरबान भी अंग अंखे चूरे, बुद्धि की बंदूक बुद्धि बंदूक चलाऊ रे मैं चित की चकमक लाऊ रे, मैं दम की दारू भरता रे ले प्रेम प्याला जरता रे, मैं गोला ज्ञान चलाऊ रे मैं चोट निशान लाऊ रे। कहते मैं इस तत्व ज्ञान रूपी गोले को तेरे ऊपर ठोक दूंगा और मन तेरे इस ऐसी चोट मारूंगा कि तू फिर गलत नहीं चल सकता। तू चाल कहां तक चाल रे तू निस्तिन हृदय सा ले रे, मैं मारूंगा नहीं छाडू रे खाखी मन घर ते काडू रे, इस नकली मन इस खोखे मन को जो बकवादे करता है, बीड़ी शराब मांस तमाकू चोरी ठगी आधी जो करके ये हमारा क्रम बिगड़वाता है, परमात्मा कहते हैं मेरे तत्व ज्ञान रूपी गोले से तुझे ऐसा कंडम कर दूंगा खाकी मन तू गलत नहीं कर सकेगा। पुण्यात्माओं ये प्राणी परमात्मा की सद्भक्ति ना करके जब तक अपने कर्म पुण्य कर्मों के शुभ कर्मों को ये भोगता है तो ऐसा लगता है जैसे मैं जो साधना कर रहा हूं वो मेरी मदद कर रही है, वर्तमान में जो साधना कर रहा हूं, और उसको सभी सुख पूर्व संस्कार से होते हैं, वो अनजानपने में अज्ञानता के कारण मान लेता है कि मैं जो पूजाएं करता हूं वो मुझे लाभ दे रही है, और जिसमें पाप कर्मों का दौर शुरू होता है फिर वही पूजाएं करते करते उसकी वो दुर्गति हो जाती है, चक्कर मारता है, कहीं फिर मंदिरों में जाता है, मस्जिदों में गुरुद्वारों में पहाड़ों पर पर्वतों पर घूमता है, वहां भी राहत नहीं मिलता है तो अपने तीर्थों पर जाता है, वहां भी नहीं मिलता फिर संतों की तरफ चलता है, और जब तक पूर्ण संत नहीं मिलते उसको कोई लाभ नहीं होता, फिर उसकी ब्रांड माटी होकर के दुर्गति होकर के या तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या फिर उसको कोई राहत नहीं मिलती तो शराबी कबाबी बन जाता है। अब हम धनी बनना चाहते हैं किसी के धन को लूटकर, क्योंकि भगवान से सहारा मिला नहीं। भगवान से सहारा क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने सत भक्ति प्राप्त नहीं हुई, परमात्मा से हम कनेक्टेड नहीं हुए, परमात्मा की पावर हमें नहीं मिली। जैसे हाथ से पंखा हलाते हैं और जिसमें हम परमात्मा का कनेक्शन यानी पावर का कनेक्शन मिल जाता है बिजली का, तो पंखा अपने आप घूमता है, छत वाला पंखा या खड़ा पंखा जैसा भी, तो वो पावर से चलता है। हम हाथ से कोई भी काम करते हैं, जैसे चाकी पीसते थे, पीसते हैं हाथ से, और फिर जब पावर मिल जाती है वही चक्की फिर ऐसे घूमती है अपने आप अपने आप। तो ऐसे ही जब तक हमें परमात्मा की पावर नहीं मिलेगी, उससे हम कनेक्ट नहीं होंगे, उससे योग युक्त नहीं होंगे, तब तक हमें कोई एक्स्ट्रा लाभ नहीं मिल सकता। क्योंकि अपने पुण्य कर्मों से हमें लाभ हो रहा है, पाप कर्मों से हानि और दुख हो रहे हैं। और जब परमात्मा की कृपा हो जाएगी हमें, जैसे गर्मी से दुख हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, पावर मिल गई, बिजली मिल गई, पंखा ला लिया, वो सुख में बदल गई, कूलर ला लिया, वो दुख नहीं रहा। इसी प्रकार हम जो हमें प्राप्त है वो हमारा पूर्ण संस्कार है। पूर्ण संत मिलने के बाद जो हमें क्रियाएं बताई जाती हैं, उसकी जो साधना हम करते हैं, वो हमें पावर परमात्मा की मिल जाती है, उससे फिर लाभ होता। जब तक हमें लाभ नहीं होता तब तक क्यों नहीं होता? क्योंकि हम किसी उस परमात्मा से संबंधित नहीं हो पाए जो हमारे सर्व कष्ट निवारण कर सकता है, इसलिए हम बुराइयों की तरफ चल पड़ते हैं। अब हम जो दुखी होकर के, महादुखी होकर के, सब पूजाएं करके थक चुका है, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, और यहां परमेश्वर कबीर साहब के दरबार में आता है और उसको परमेश्वर की भक्ति दी जाती है, कनेक्शन दिया जाता है, वो सुखी हो जाता है, उसका रोग नष्ट हो जाता है, उसके जो घाटे हो रहे थे वो तो रुक जाते हैं। फिर वो प्राणी को समझाया जाता है, ज्ञान दिया जाता है कि जो पाप किया करेगा, किसी के धन लूटेगा, चोरी करेगा, ठगी करेगा, तो तुझे वो दुख होगा जो पहले था। फिर वो कभी चोरी नहीं कर सकता, किसी की आत्मा नहीं दुखा सकता, बुरे कर्म नहीं करेगा। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि तेरे मैं गोला ज्ञान चलाऊं रे, गोला तोब का गोला, मैं गोला ज्ञान चलाऊं रे, मैं चोट निशाने लाऊं रे। ये तत्व ज्ञान रूपी गोला ऐसी चोट मार देगा कि भूल के भी बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि इसको ज्ञान हो जाएगा कि ये बुरे मैं करूंगा, मुझे भोगने पड़ेंगे। तो ऐसे ज्ञान से कहते हैं, मन मारूंगा नहीं छाडू रे, मन खाखी मन गर्ते काडू रे, तू चाल कहां तक चाल रे, निस्दिन हृदय सा ले रे, के तू दूसरों को दुखी करता है। शारीरिक बलवान है वो वैसे गरीबों को तंग करता है, कोई मंत्री एमएलए बनकर के दूसरों को वैसे परेशान करता है, कोई अधिकारी बनकर के किसी और निचले व नीचे वालों को दुखी करता है, वैसे भी कोई दो पैसे घर में हो गए तो वो बकवाद करता है, दस दो चार बेटे हो गए वो परिवार दूसरों को तंग करता है। तो यहां क्या कहता है, तू चाल कहां तक चाल रहे, तो निस्तिन हृदय साल रहे, हृदय सालना माने दुखी, हृदय में दुख पीड़ा पैदा करना, हृदय दुखाना किसी का। आठ पटन सब लूटा रे, तू आठों गाठों झूठा रे, तब बस्ती नगर उजाड़ा रे, खाखी मन झूठा दारा रे, ये तीन लोक में फिरता रे, इसे घेर रहे नहीं घिरता रे। इस तीन लोक में फिर रहा है, कहते यो किसी से डांटा नहीं डटता। आप देख लो किसी से, कहते हैं भगवान शिव जी ने, देखा कि पार्वती जी ने झूठ बोल दिया। भगवान शंकर अपनी पत्नी पार्वती जी पर पूर्ण विश्वास करता था कि ये मेरे साथ कभी भी दगा नहीं कर सकती, ये मेरी बहुत वफादार है, मेरे सामने ये कभी झूठ नहीं बोल सकती। अब उसने क्या झूठ बोल दिया था? जब श्री रामचंद्र जी वनवास में थे, उनकी पत्नी सीता जी को लंका पति रावण अपहरण करके उठा ले गया था। उसके वियोग में श्री रामचंद्र जी तड़फ रहे थे, विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। उसमें भगवान शंकर और पार्वती अपने लोक से देख रहे थे। भगवान शंकर ने उस रो रहे नीचे व्यक्ति यानी श्री रामचंद्र उर्फ विष्णु जी को प्रणाम किया। पार्वती जी ने कहा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो? शिव भगवान ने कहा कि सामने विष्णु भगवान है, ये दशरथ के घर इन्होंने जन्म लिया है, इसलिए मैं इस प्रभु को प्रणाम कर रहा हूं। पार्वती ने देखा कि ये तो रो रहा है बुरी तरह, बालकां की तरह रो रहा है, विलाप कर रहा है, सीते कहां गई, सीता कहां गई, कहां गई मेरी सीता, कभी इनको मृगों को उनके गले लिपट के रोता है, मेरी सीता देखी तुमने, ऐसे विलाप करे। तो पार्वती ने कहा कि भगवान ऐसे थोड़े होते हैं, भगवान होता तो ऐसे थोड़ा रोता ही, मैं इसकी परीक्षा लूंगी, यदि ये भगवान होगा मैं सीता रूप बनाऊंगी, इसके सामने जाऊंगी, यदि मुझे ये पहचान लेगा कि मैं सीता नहीं हूं तो मैं इसको भगवान मानूंगी और प्रणाम करूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी। शंकर भगवान ने कहा कि ऐसा मत करना, यदि तू सीता रूप बनाएगी तो मेरे काम नहीं रहेगी। पार्वती ने कहा ठीक है, जैसा आप कहोगे मैं नहीं करती परीक्षा। अब शिव भगवान जब अपने घूमने फिरने बाहर चला गया तो तुरंत सीता रूप बनाया पीछे से धोखा देकर, और नीचे आकर के रामचंद्र जी के सामने खड़ी हो गई। रामचंद्र जी ने कहा कि हे दक्ष पुत्री, हे दक्ष की बेटी, यहां कैसे आना हुआ, भगवान शिव को कहां छोड़ आई? तो पार्वती ने उनके चरण दिए और कहा तुम सचमुच भगवान हो, भगवान शिव आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे, ऐसा कहकर वो वापस आ गई। अपुण्यात्माओं, यहां एक थोड़ा सा उदाहरण देते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में लिखा है कि सभी प्राणियों का बल मैं हूं, सबकी बुद्धि मेरे हाथ में है, जब चाहे मैं इनको बल प्रदान कर देता हूं, जब चाहे मैं इनको बुद्धि प्रदान कर देता हूं, जब चाहे मैं इनकी बुद्धि को ऑफ कर देता हूं, बंद कर देता हूं। अब जैसे श्री रामचंद्र जी उर्फ विष्णु को स्वयं तो पता नहीं तेरी पत्नी कौन उठा ले गया, उस समय तो काल ने वो बुद्धि तो बंद ऑफ कर दी श्री रामचंद्र जी की अर्थात विष्णु जी की, और जब पार्वती सीता रूप बनाकर गई तो वो ऑन कर दी बुद्धि, उसको पहचानवा दिया सीता, पार्वती को तो पहचान लिया और अपनी पत्नी का पता नहीं उसको कौन उठा ले गया। इससे काल भगवान कहता है कि मेरे 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं उनकी बुद्धि मेरे हाथ में है, और उन बलवानों का बल भी मैं ही हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि भी मैं ही हूं। जैसे अर्जुन को बल दे दिया जब महाभारत करवाना था और उसने कौरवों की सेना का सर्वनाश कर डाला, और वही अर्जुन जब श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मार दिया, उनकी हत्या कर दी गई एक शिकारी के द्वारा, और श्री कृष्ण जी की पत्नियों यानी गोपियों को लेकर के 16,000 रानियां थी उसकी, उसकी 8 रानियां तो श्री कृष्ण जी की थी जो उसने शादी की थी, और 16,000 थी जो उसने एक राजा से कैद की भी औरतें छुड़वाई थी, वो भी अपनी पत्नी के रूप में उन्हें रखा था। उन 16,000 उनको और साथ में अन्य जो वहां यादों की पत्नी उनको लेकर के अर्जुन द्वारका से चल पड़ा इंद्रप्रस्थ के लिए। रस्ते में जंगली लोगों ने अर्जुन को पीटा, अर्जुन के पास वो धनुष भी विद्यमान था जिससे उसने महाभारत के युद्ध में ना जाने कितना सर्वनाश किया था, और सूरवीर की पदवी पाई थी, और वहां पर वो भील उनको पीट रहे हैं और अर्जुन के हाथ में वो धनुष थर थर कांप रहा है। औरतों को ले गए, काफी औरतों को ले गई, और कुछ एक के वो धन गहने लूट कर ले गए। अर्जुन खड़ा खड़ा देख रहा, कुछ नहीं कर सका। फिर वो अर्जुन कहता है कि ये कृष्ण बड़ा छल दिया था, बड़ा धोखेबाज था, जब इसने युद्ध करवाना था जब तो मुझे शक्ति दे दी, अब मैं वही अर्जुन वही मेरा धनुष, आज मैं इसको धनुष को प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा पा रहा हूं। परमात्मा कहते हैं कबीर साहब कि ये श्री कृष्ण छलिया नहीं था, श्री कृष्ण कपटी नहीं था, ये तो काल भगवान का खेल है जिसको तुम्हारी बुद्धि नहीं समझ सकती। तो यहां क्या बताते हैं, तो उसके बाद जब श्री शंकर भगवान जी को पता चला कि पार्वती ने तो बात बिगाड़ दी, इसने तो वही कर दिया जिसको मैंने मना किया था, क्यों काल ने फिर उसकी बुद्धि खोल दी, शंकर जी की बुद्धि खोल दी, क्योंकि इसने तो लड़ाई कराने तो मतलब है किसी भी जीव को चैन तो नहीं रहने दे। आप घर में देख लो कितनी शांति करने की चेष्टा कर लो, एक आधी बात ऐसी प्रेरित कर देगा क पत्नी में क पति में क बेटे में क बेटी में, शाम तक शांति पैदा करवाना इसका प्रथम कर्तव्य है कि ये भगवान की तरफ ना लग जा, सदमार्ग की तरफ ना चले, ये बकवादा में बड़ा रहे रूसा रहे कि तो लड़ाई कर ले फिर मन मुटाव हो जाए, भक्ति ना कर सके। लेकिन परमात्मा जब साथ हो जाते हैं इसकी चाल नहीं चल पाती। तो कहने का भाव ये है कि पार्वती के उस कपट को अब शंकर जी में प्रेरणा कर दी कि इसने धोखा किया, तब उसकी देवदृष्टि खुल गई, कहने लगे आपने परीक्षा ली है, पार्वती नाटकीक ना, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। और उधर से उसके मन में बैठ गई क्या झूठ बोल रही है, परीक्षा लेकर आई है। वो उससे उससे कहा कि तूने परीक्षा ली है और सीता रूप धारण किया है, सीता लक्ष्मी का रूप है, लक्ष्मी मेरी बड़ी भाभी लालो माता के तुल है, मेरे मां के समान तू होगी है, अब मेरे काम की नहीं रही, तूने मेरी माता का रूप बनाया। उसके बाद उससे शारीरिक संबंध समाप्त कर दिया, बोल चाल बंद कर दी। पार्वती समझ गई कि यह पक्का अपने जो प्रतिज्ञा के बहुत दृढ़ है, अब ये तुझे स्वीकार पत्नी रूप में नहीं करेंगे। तो उसने सोचा भी यहां रह के मैं क्या करूंगी, अपने पिता के घर चलती हूं, जब बेटी दुखी हो जाती है। इस पार्वती ने सब इच्छा से सबके मना करते हुए मां के भी पिता के भी औरों के भी, तो श्री शंकर भगवान से शादी की थी, इससे माता पिता शुभ थे। अब जब देखा कि ये पति देव भी अक्षुब्ध हो गया और कोई यहां पर है मेरा है नहीं, तो घर चलती हूं, माता पिता बुरे नहीं होते, बेटा बेटी चाहे गलती कर भी दे, ऐसे दृष्टिकोण से। उधर क्या देखा कि भगवान वहां उनके पिता दक्ष जी एक यज्ञ कर रहे थे, उसमें सभी अन्य बेटियों के दामादों को बेटियों को आमंत्रित किया हुआ था, ऋषि सभी आए हुए थे, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु भी आए थे, लेकिन भगवान शिव को न तो न्योता दिया, आमंत्रित भी नहीं किया, और न ही उसका कोई अलग से स्थान रखा के उसका भाग रखा, जैसे कोई बेटी का दामाद नहीं आया हुआ था किसी कारणवश, तो उसका एक आसन लगा रखा था और प्रतिदिन जो सबको दान दक्षिणा करते हैं उसका दान वहां रखा जाता था, ऐसे श्री शिव के भगवान के लिए नहीं किया हुआ था, यानी पार्वती के पति के लिए नहीं किया था। जब पार्वती वहां पहुंची तो सारे यज्ञ मंडल में घूमकर आई, तो उसने देखा कि ये तो यहां यज्ञ हो रहा है और हमें बुलाया नहीं पिता ने। वो अपनी मां के पास गई, मां ने कुशल अक्षेम पूछना चाहा तो क्रोध होकर के पार्वती ने कहा कि माता तुमने अपने हमें बुलाया नहीं और न ही तुमने अपने दामाद का कहीं भाग रखा है। तो माता ने कहा बेटी आपने सविच्छा से शादी की थी, इसलिए तेरे पिताजी तुझसे अक्षुब्ध हैं, दुखी हैं, नाराज हैं, और मेरी ना तो तू मानती और ना तेरा पति तेरा पिता मानता, मुझे नहीं मालूम, तू अपने बाप तो पूछ ले इसके बारे में। वो दक्ष के पास गई, पिताजी आपने हमें आमंत्रित नहीं किया, क्यों नहीं किया, और मेरे जो पति का आपने कहीं भी भाग नहीं रखा। तब दक्ष ने कहा कि आप बगैर बुलाए यहां क्यों आए, तुझे यहां नहीं आना चाहिए था, तुझे किसने बुलाया है, और ऐसे अनाड़ी को जिसके गले में नाग पड़े हो, शरीर से नंगा राख लपेटे फिरता हो, ऐसे जंगली व्यक्ति को बुलाकर मैंने अपना अपमान नहीं करवाना, आप जा सकती हैं। तो पार्वती ने सोचा कि ना तो वहां ठिकाना, ना तेरा यहां ठिकाना। वहां पर हवन कुंड था बहुत बड़ा, उसमें दो दो किलो घी एक कब डाला जा था, और लकड़ी तो भट बड़ा था खूब डीक, अच्छी तरह लपटे निकल रही थी। पार्वती ने आव देखा ना ताव देखा, उसमें कूद गई, छलांग लगा दिया, छलांग लगा दी तो उसमें वह सारी जलगी तुरंत निकाल लिया, उसके अस्थि ही शेष रह गई। उधर से कहते हैं भगवान शंकर ने, भगवान शंकर को पता चला तो आया, उसने राजा दक्ष अपना एक वीरभद्र भेजा, उसने राजा दक्ष की गर्दन काट दी। ये पुराण में कथा लिखी, शिव पुराण में, ज्यादा नहीं सुनाना चाहता, हम अपना जो आवश्यक प्रकरण है उसी पर विचार करते हैं। तो भगवान शिव ने देखा कि पार्वती जली पड़ी है, केवल अस्थि शेष रहती हैं, अज जला शरीर, उसको सीने से उठा लगा लिया और उठाकर चल पड़ा, पार्वती पार्वती करता हुआ। 10,000 वर्ष तक इसी वियोग में खाना न पीना, बुरा हाल, बाल बढ़ गए बुरी तरह, और उसको सीने से लगाए फिर रहा है। पुण्यात्माओं, हम इन्हें भगवान मानते थे, ये ठीक है हमसे परम है, हमसे श्रेष्ठ है, हमसे उच्च आत्माएं हैं, लेकिन ये भी जीव संज्ञा में है। अब जैसे एक भैंस का काटडू मर गया, बच्चा या बच्ची, कट्टा या कटिया, तो उसके मरने के बाद व्यापारी लोग क्या करते हैं, उसके शरीर में से उसके चाम को उतार के उसमें भूस भर देते हैं, और उसके पूछड़, छोटा सा पूछड़ होता, पूछड़ न्यूकाई पूछ व दूम न्यूकी न्यू रख लेते हैं, और उस भूस भरे हुए चाम को उस भैंस के सामने लटका देते हैं, और वो भैंस उसको अपना बच्चा जान के चाट चाट के और वो दूध देने लग जाती है, और उस बच्चे को उठा करके कोई चलता है तो पीछे पीछे भागी फिरती है, उसको अपना बच्चा मान के वो चाम के उस एक मूर्ति बुत बना रखा होता है, चाम में भूस बन भूस भर के और उसको लटका के चल पड़ता है व्यापारी, और वो पशु व भैंस उसके पीछे पीछे भागती फिरती है, वो उसको अपना बच्चा मान रही है। तो यहां हमारे भगवान में और उस भैंस में कितना अंतर है, विचार कर लो। इसको मोह कहते हैं, ये भगवान विष्णु की शक्ति से, भगवान विष्णु के अंदर से निकल रही वो निर्गुण शक्ति, निराकार शक्ति जो प्रभावित कर रही है, इससे सभी प्राणी ऐसे प्रभावित हैं, इतना प्रबल मोह हो जाता है तो जीव के बस का नहीं। तो वहां से काल भगवान ने विष्णु में प्रेरणा की, तो विष्णु ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, पार्वती के टुकड़े टुकड़े किए, उस दक्ष पुत्री के टुकड़े टुकड़े किए, सती के जहां पर नैन गिरे वहां नैना देवी, सिर गिरा वहां मनसा देवी, और धड़ गिरा वहां पर वैष्णो देवी, ये मंदिर बना डाले हमने बाद में। अब वो मनसा देवी के ऊपर आपने देखा कितने आदमी मर गए, वो केवल एक यादगार बनाई गई थी कि इन कथाओं को कोई झुठला ना दे जो पुराणों में लिखी है, इसलिए वहां एक यादगार बना दी, एक मंदिर नुमा, एक गोल गुम्बज नुमा एक सतूप बना दिए गए थे, यादगारें बनाई गई थी, केवल ये प्रमाणित रखने के लिए कि सचमुच घटना घटी थी, कोई इन हमारे पुराणों को झुठला ना दे। बाद में उनकी पूजाएं शुरू होगी, वहां से मन्ते मानने लगे, और अब वहां पर क्या क्या कहर टूट रहे हैं, ये भोली भाली जनता, ये भोले श्रद्धालु, इन नकली झूठे कपटी गुरुओं ऋषियों के बातों में आकर के वहां कल्याण अर्थ जाते हैं और सर्वनाश करा लेते हैं। आपने पीछे पेपर में पढ़ा होगा मनसा देवी में भगदड़ माच गई थी, 200-250 आदमी मर गए थे। एक वहां जोधपुर के अंदर नवरात्र में वैष्णो देवी की पूजा चल रही थी, वहां 200-250 आदमी मर गए आपस में भगदड़ माच के। गए थे वो नवरात्रों की पूजा करने और पूरा ही कल्याण कर दिया उसका उस नवरात्रों की पूजा ने। तो कहने का भाव यह है कि जब टुकड़े टुकड़े कर दिए विष्णु उस सुदर्शन चक्र ने, तब उस विष्णु भगवान शंकर की आंखें यानी मोह टूटा कि ये तो शरीर छूट चुका है। तो वहां उनको दफना करके फिर उसके मन में आता है, भगवान शंकर के मन में आया कि मैंने शादी की, मेरे अंदर वासना थी तो मैंने ब्याह कराया, और यदि ये कामदेव ये वासना ये रजोगुण मेरे अंदर जितना दबाव दे चुका, यदि मैं अपने इस कामदेव को समाप्त कर दूं तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अपने विकार इस कामदेव को समाप्त करने के लिए, वासना को नष्ट करने के लिए 88,000 वर्ष तक तप किया और इसने मान लिया कि मैंने अपना मन जीत लिया, इंद्रियों पर काबू पा लिया, कामदेव को नष्ट कर दिया। कुछ दिनों के बाद ये मस्ती में रहने लगे, काल ने रिमोट से भगवान शंकर की बुद्धि में प्रेरणा की, क्योंकि ये काल नहीं चाहता कि एक सभी ब्रह्मचारी बनकर बैठ जाएंगे, जिस तरह शिव जी ने हठ किया है तो आने वालों के लिए भ्रम खंडन कर दूं, कहीं वो भी समाधि लाला के हजारों वर्षों तक साधना करते रहें और संतान उत्पत्ति हो नहीं, और मैं 1,00,000 जीव कहां से खाऊंगा। एक उदाहरण बना दिया कि तुम इतनी साधना नहीं कर सकते, कदे कोई ब्रह्मचारी बनकर बैठ जा तुम्हारी फिर बाद में दुर्गति होगी। ये केवल परमात्मा कबीर साहब की शरण में आने के बाद फिर ये दाव नहीं लगता काल का, चाहे शादी कराओ या ना कराओ। परमात्मा का ज्ञान, उसकी भक्ति, उनकी प्रेजेंस, उसकी सर्कमस्टांस परमात्मा ऐसे बना देता है कि वो काल के जाल में नहीं फंसेगा। और जब तक परमात्मा का हाथ नहीं, जो मनमुखी साधनाएं अपनी अपने हिसाब से जो साधनाएं करते हैं वो प्राणी वो काल के जाल में ही रहते हैं। तो उसमें क्या हुआ, भगवान शिव अपने मन में मान चुके थे कि मैंने कामदेव को जीत लिया, अब मैं कभी किसी स्त्री पर आसक्त नहीं हो सकता। एक दिन काल भगवान ने उसका वो रिमोट दबाया, मन में सोच उठी कि सुना है जब सागर मंथन हुआ था भगवान विष्णु जी ने एक सुंदर स्त्री का रूप बना करके राक्षसों को मोहित किया था नाच डांस करके, और उनसे अमृत का कलश घड़ा छीन लिया था और मद्रा का उनको दे दिया था, जिससे राक्षस लोग मद्रा पीकर के मदहोश हो गए थे, देवता अमृत पीकर के आनंदित हुए थे। तो क्यों ना कहते हैं भगवान शंकर को विचार था कि मैंने विष ग्रहण किया था जिस कारण से मैं उस दृश्य को नहीं देख सका, मुझे विष का नशा छा गया था। अब भगवान विष्णु के पास चलता हूं, उनसे पूछता हूं, उनसे वो रूप बनवाकर देखता हूं जिस रूप से उसने राक्षसों को मोहा था, मोहित किया था। ये विचार करके भगवान विष्णु के पास विष्णु लोक में गए। भगवान विष्णु जी वहां विद्यमान थे, अवभक्त की कि आओ भगवान कैसे आना हुआ। उन्होंने अपना प्रयोजन बताया, कहा कि भगवान उस समय मैं अचेत था, मुझे होश नहीं था, और सुना है कि आपने ऐसे ऐसे सुंदर स्त्री रूप बनाकर आप बहुत सुंदर लग रहे थे, देवता लोग बताते हैं, तो मुझे आप अपना वो मोहनी रूप बनाओ के दिखाओ। अब भगवान विष्णु कहने लगे, महात्मा ए भगवान ए भोलेनाथ, वो तो कोई समय था, और भाई मजबूरी में ना जाने के रूप बनाना पड़ जावे। अब मैं कैसे स्त्री बनू, मुझे शर्म आवे, मैं नहीं बनू स्त्री विस्त्री। तो भगवान शिव जी कहने लगे कि भगवान देख लो, मैं तो बैठ गया तेरे द्वार पे, जब तक मुझे स्त्री वो मोहनी रूप नहीं बना दोगे मैं तो जाऊं नहीं। भगवान विष्णु को मालूम था कि ये पक्के हैं अपनी जिद के, हट के पक्के हैं। ईब तो 88,000 वर्षों में उठकाए हैं, यहां समाधि ला ली तो ये कद्दे भी ना उठे, फिर इसे तो पीछा छुटाना ही पड़ेगा, ये तो धरना दे देगा यहां पर। तो परमात्मा ने उस भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं अभी आता हूं, बैठो आप, उस जलपान कराता हूं आपको। अपने महल में चले गए और वहां से अदृश्य होकर के जहां भगवान शिव जी बैठे थे विष्णु जी के बाहर बरंडे में, वहां सामने देखा एक जंगल था, बहुत सुंदर बाग था। उस बाग में भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप बनाया और सुंदर गाना गाना प्रारंभ किया, मीठा सुरीला गाना गाना प्रारंभ किया और अर्धनगर शरीर ऐसे वस्त्र पहन रखे थे। अब भगवान शिव ने इधर उधर देखा, कोई नहीं देख रहा था, तो तुरंत उस लड़की की तरफ और बाघ की तरफ चल पड़े, दौड़ लिए। वो लड़की भी आगे को चलती रही। भगवान शिव जी भी कदम उठाकर तेजी से चलने लगे, तो लड़की काफी आगे चली गई, उसने जाकर के उनका हाथ पकड़ लिया। भगवान शिव ने पूर्ण रूप से प्रेरित थे वासना से, और भी कुछ ऐसी गति उनकी होगी थी जो यहां वर्णन नहीं की जा सकती। तब उसी समय भगवान विष्णु अपने स्वरूप में आ गए और हंस रहे थे कि भोलेनाथ जैसे तू मूर्ख बना दिया, ऐसे मैंने वो देव राक्षस मूर्ख बनाए थे। हंसने लग गया, नीची गर्दन कर ली और कहने लगे तेरी लीला तू ही जाने। तो परमात्मा क्या बताना चाहते हैं, जैसे अग्निकाष्ट के माही है व्यापक पर दिख नाही, ऐसे कामदेव पर चंडा व्यापक सकल दीप नौ खंडा। अब जैसे अग्नि में काठ है, काठ में अग्नि है, काष्ट के लकड़ी में अग्नि है, और जब इसको वैसे अग्नि नजर नहीं आती, जब इसको तिल्ली लगाई जाती है तो प्रज्वलित हो जाती है। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं ये वासना जो रजोगुण है ऐसे प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है प्रत्येक स्थान पर, और जब ये संयोग होता है तो उतना ही प्रबल होता है। कहते हैं विकार मरे मत जानना जो भूबल में आग, ये तो कबीर परमात्मा की कृपा से इनकी भक्ति से साधना से ये कंडम हो जाते हैं और फिर सतलोक की धुन बन जाती है। उस ज्ञान से हमें क्या होता है कि इंद्रदा राज कागदा बिष्टा ना भोगा इंद्राणी नू, सुखदे पास हुरंबा आई जक ध्यान लगा निर्वाणी नू। हमने फिर एक ही इच्छा रह जाती है सतलोक जाने की, और कुछ भी चाह शेष नहीं रहती, सभी काग की बीट दिखाई देती है, काग की टट्टी दिखाई देती है। अब क्या बताते हैं परमात्मा, यो तीन लोक में फिर तारे इसे घेर रहे नहीं घिर तारे, यो मन कहिए अकमाया रे इन्हें बहुविध धुंध द्वंद मचाया रे, ये माया चढ़ी अहेड़े रे या हंसा चुन खात नबेड़े रे, या मन माया का गोणा रे ये नरकनक कामणी सोना रे। ये क्या मीही क्या मोटी रे सभी जानो खोटी रे, ये मन माया की जाली रे या निर्गुण सरगुण डाली रे, ये त्रिगुणमयी माया। कहते इसे छोटी कहूं चाहे मोटी या सारी ये खोटी, चाहे एक रिक्शा चालक में विकार है वो भी जुल्म कर डालेगा, एक मंत्री प्रधानमंत्री या सेठ में विकार है वो भी दाव लगते अपने काम कर देगा, कहने का चाहे ऋषि महर्षि देवता ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इन्होंने भी घाट निकाली। तो यहां क्या कहते हैं, ये माया ये क्या, ये मन माया का गौना रे, नर कनक कामणी सोना रे, ये क्या मी ही क्या मोटी रे, नर जानो सभी खोटी रे, या मन माया की जाली रे, या निर्गुण सरगुण डाली रे। अब इस मन को कैसे डांटना रोकना चाहते हैं प्रभु, क्या समझाना चाहते हैं। चल सुख सागर ले चालू जाऊं रे, मन अग है देश दिखाऊं रे, चल तुझे सुख सागर ले चलूं, वो अग है देश यानी से आगे वाला न्यारा देश तुझे दिखलाता हूं। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब को दिखाया परमेश्वर ने, कबीर साहिब ने, आदरणीय दादू साहिब जी को दिखाया, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिखाया, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को दिखाया, आदरणीय नानक साहिब जी को दिखाया, आदरणीय घीसा साहिब जी को दिखाया, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिखाया। तो इन महापुरुषों ने जब वो लोग देख लिया तो यहां का सब संसार कति खारा नजर आने लगा, यहां की कोई भी वस्तु की चाह हृदय में नहीं रही। तो उन्होंने आंखों देख लिया, अब हम बुद्धिमान है, हमारे शिक्षा होगी, अक्षर ज्ञान युक्त हो गई, हम उन प्रमाणों को जो महापुरुषों ने देखा और उनकी वाणी में प्रमाण है, हम उसको देख करके अपने यहां से हृदय हटाकर सतलोक चलने की तैयारी करेंगे। तो यहां से इस खाकी मन से हम ऐसे छुटकारा पा सकेंगे। चल सुख सागर ले जाऊं रे, मन अग है देश दिखाऊं रे, कर सुख सागर स्नाना रे, चलो देखो देश दीवाना रे, चल देखो देश हमारा रे, जा कोट पद्म उजियारा रे, चल देखो देश हमारा रे, जा सत शब्द झनकारा रे, चल देखो देश हमारा रे, जा उज्जवल भौर गुंजारा रे, चल देखो देश हमारा रे, जा भौर चौर सुहंगम डारा रे, चल देखो देश हमारा रे, जा चंद सूरज नहीं तारा रे, चल देखो देश हमारा रे, जा नहीं धर अंबर गए नारा रे, चल देखो देश हमारा रे, जा घूमत है मतवारा रे, रे मन की जय दारमदारा रे, तू ले तुझे ले छोड़ू दरबारा रे, फिर भव सागर नहीं आवे रे, सतगुरु सब नाच मिटावे रे, ये फिर इस संसार में नहीं आएगा। कबीर परमात्मा गरीबदास जी अपने अमृतवाणी में बोल रहे हैं कि सतगुरु यानी सच्चा गुरु जो मिलेगा, सतगुरु सब नाच मिटावे रे, जन्म मरण के चक्कर से 84 लाख योनिया में यहां हम उत्पन्न हुए हैं, तो हमारे अंदर विकार भी पैदा होंगे। ये तो कबीर परमात्मा की रजा होगी, भक्ति करेंगे, सच्ची श्रद्धा से लगेंगे तो अपने इस प्रारब्ध को भोग कर हम सतलोक चले जाएंगे, उसके बाद सब नाच मिट जाएंगे, ना जन्म रहे, ना मृत्यु रहे, ना ये विकार रहे। फिर भव सागर नहीं आवे रे, सतगुर सब नाच मिटावे रे, चल अजब नगर विश्राम मारे, तुम छोड़ो दैना बा मारे, चल देखो देश अमानी रे, जा ना कुछ पावक पानी रे, चल देखो देश अमानी रे, जा बसे दरसे बारा बानी रे, चल देखो देश अमानी रे, मैं सतगुर पे कुर्बानी रे, चल देखो देश बिलंदा रे, जा बसे कबीरा जिंदा रे। वो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा आते हैं कबीर जी, और वो नानक साहिब जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे बेई नदी पर, गरीबदास जी महाराज को मिले थे छुड़ानी में जिंदा महात्मा के रूप में नला नामक खेत में, ऐसे दादू साहिब को सांभर में मिले थे, दादू साहिब को घर पर भी मिले थे, ऐसे ही धर्मदास जी को जिंदा महात्मा के रूप में मथुरा में मिले थे। तो यहां क्या बताते हैं, चल देखो देश बिलंदारे, जा बसे कबीरा जिंदारे, चल देखो देश अगाहारे, जा बसे कबीर जुलाहारे। वो धानक कबीर जो है सतलोक में रहता है, चलो वहां दिखा दू तुम्हारे को, ये साधना करो, फिर देखो वहां चल के, वो ही काशी में आया था धानक रूप धार के, जुलाहा रूप बना करके, वही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म तुम्हें सतलोक में दिखा दूंगा। चल देखो देश बिलंदारे, जा बसे कबीरा जिंदारे, चल देखो देश अगाहारे, जा बसे कबीर जुलाहारे, चल देखो देश अमोली रे, जा बसे कबीरा को लीरे, चल देखो देश अमाना रे जा बुने कबीरा ताना रे। उस सतलोक में दिखा दूं परमात्मा वहां कपड़ा बुन रहा है, कौन सा कपड़ा, सभी ब्रह्मंडों का रचनहार, सभी के शरीर रूपी कपड़े को बनाने वाला यानी वही मूल मालिक है, सबका रचनहार वही है। चल अवगत नगर निवासा रे, जहां नहीं मन माया का वासारे, वहां पर ना ये मन है ना ये त्रिगुणमयी माया है। चल अक्षरधाम चलाऊं रे, मैं अवगत पंथ लखाऊं रे, कर्म करतार पियाना रे, जो शब्द शब्द समाना रे, जहां बाजे अनहद तूरा रे, चल देखो अजब जहूरा रे। चल सिंध सिंध मिलाऊ रे, भव सागर भौर न आऊ रे, जा अजब हिरंबर हीरा रे, जा बसे संस रहे सुख तीरा रे, जा अजब हिरंबर हीरा रे, यम दंड नहीं दुख पीड़ा रे, जा अजब हिरंबर मेला रे, चल हद बे हद पर खेला रे, गुलजार गली चागा दी रे, सुन मंडल साध समा दी रे, चल मान सरोवर दरिया रे, सुख सागर मेला भरिया रे, नितन तीनाद निरंजन रे, अवगत साहेब दुख भंजन रे। वो परमात्मा सर्व दुखों का भंजन नष्ट करने वाला कबीर परमात्मा है। जहां कादर करतार करी मारे, जहां कुशल सही हम खी मारे, जहां शंख बानो पर का सारे, जहां जिल मिल नूर निवास सारे, ग्रीब जेती मन की वासना तेती मन की लारे, सतगुरु पूरा जो मिले सब गुण अब गुण डार गेर जार, ग्रीव सतगुरु मिले तो क्या करे, सीजे नहीं बटम्बे, औखद अंदर ना लगे है घट में रोग अटम्ब। ओह सतगुरु मिले तो क्या करे, अगर सतगुरु आ गए और हमें समझाने लगे और हमारे अंदर ये ज्ञान तत्व ज्ञान रूपी औखद यानी दवाई अंदर नहीं गई तो परमात्मा क्या करे, क्योंकि हमारे अंदर ये बहुत जबरदस्त रोग हैं, ये चार पांच विकार जो हैं जबरदस्त हैं, ये अंदर ज्ञान रूपी और भक्ति रूपी जो औखद जाएगी औषधि जाएगी तभी ये रोग कटेगा। सतगुरु मिले तो क्या करे, समझे नहीं बटम्बे, औषध अंदर ना लगे घट में रोग अटम्ब, गरीब सतगुरु मिले तो क्या करे, अंदर बाद विवाद, सिर जम दंडंडा खात है चाहे कोट मिलो जो साध। ये काल ने ऐसा बिगाड़ दिया ज्ञान को कि इसको बाद विवादी बना दिया प्राणी को, और मान बड़ाई का भूखा ये प्राणी, और गलत ज्ञान के आधार पर चाहे कहते हैं करोड़ भक्त साधन साधक मिल जाएं, संत मिले, सतगुरु को समझाने सतगुरु के ज्ञान को समझाने वाले मिल जाएं, तो भी वो नहीं मानता। क्या कहता है, गरीब सतगुरु मिले तो क्या करे, अंदर बाद विवाद, सिर जम डंडा खात है कोट मिले जो साधु। अंदर इतना वाद विवाद गलत ज्ञान भर दिया, करोड़ों संत भी मिल जाएं, भगत समझाने वाले मिल जाएं, तो भी वो नहीं मानता, और काल के इस लख 84 के कष्ट रूपी डंडे को अपने सिर पर खाता है, अर्थात कष्ट पे कष्ट उठा लेता है। ग्रीव सतगुर मिले तो क्या कह रहा, ये तजे न मन के मैल, सो मानुष नहीं जानी ये जाते निका बैल। जो समझाए तो भी ना मानते, आंखों देखकर प्रमाण भी नहीं मानते, उनके बारे में कहते हैं कि ग्रीव सतगुर मिले तो क्या कह रहा, ये तजे न मन की आंट, जाका मुख ना देखिए जासे निका नाट। कहते हैं उसके फिर पास भी नहीं जावा, शक्ल भी नहीं देखे, इसे नालायक की जो आंखों देखकर भी भगवान के प्रमाणों को देखकर नहीं मानता है। कबीर सतगुर मिले तो क्या करे, होनी हो सो हो ये, कलम लिखा जो मेटे है जा सतगुर को जो ये। सतगुरु मिले तो क्या करे, इन्हों कहेंगे देखी जागी जो होगी हो जाएगी, होनी हो सो हो, नहीं। कहते हैं ऐसे सतगुरु को, ऐसे संत की तलाश खोज कर जो तेरे भाग में लिखे हुए को मेट दे। मासा घटे ना तिल बद विदना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। तो यहां उसी की तरफ संकेत है कि कलम लिखा जो मेट है, जा सतगुरु को जो उसकी शरण में ग्रहण कर, जो आपके खोटे भाग को मिटा करके पुण्य लिख दे। गरीब सतगुरु को कुर्बान जा कर्म छुटाए कोटे, जो सतगुरु की निंदा करें जम तोड़ेंगे होठे। ओहो, सतगुरु को कुर्बान जा कर्म छुड़ा दिए कोटे। तत्व ज्ञान के आधार से करोड़ों पाप हम दिन में करते थे, वह सब छूट गए। और कहते हैं ऐसे सतगुरु की जो निंदा करते हैं, फिर यम के दूत उनको खूब गड़ेंगे, उनको उनके होठ तोड़ेंगे, फोड़ेंगे। सतगुरु को कुर्बान जा कर्म छुड़ाए कोटे, जो सतगुरु की निंदा करें जम तोड़ेंगे होठे। सतगुरु आया रे भाई, सतगुरु आया रे भाई, पर्वत से करता राई ही, पर्वत से करता राई। हम यदि परमात्मा की शरण में नहीं आते, हमारे ऊपर पहाड़ से भी ज्यादा पाप कर्म रखे हुए थे। अब परमात्मा ने तत्व नाम ज्ञान के आधार से सतनाम देकर के, सार नाम देकर के उन ढेर सारे पाप कर्मों को आग लगा दी, वो समाप्त कर दिए। सतगुरु आया रे भाई, सतगुरु आया रे भाई, पर्वत से करता राई ही, पर्वत से करता राई। बिरला जानत है कोई ही, बिरला जानत है कोई, बाजीगर है नरमोही, बाजीगर है नरमोही। वो तारंग मंत्र देवेगा, तारंग मंत्र देवेगा, जन अपना कर लेवेगा, जन अपना कर लेवेगा। वो एक ऐसा मंत्र देगा जो पार करने वाला, तारग मंत्र, और फिर अपना अपना बना लेगा, काल से छुड़वा लेगा। सतगुरु जब आएगा, परम संत आते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तारग मंत्र देवेगा, तारग मंत्र देवेगा, जन अपना कर लेवेगा, जन अपना कर लेवेगा। मन को निश्चल कर दे ही, मन को निश्चल कर दे ही, वो मन को ही रोकेगा, मन को कंडम कर देगा, निश्चल कर देगा, वो भटकता नहीं फिरेगा, एक ही भगवान भजेगा और बुराइयों से डरने लग जाएगा, वो विकार नहीं करेगा, वो भक्त जो सतगुरु शरण में आ गया। मन को निश्चल कर दे ही, मन को निश्चल कर दे ही, भवसागर से हंसा खेही, भवसागर से हंसा खेही। दास गरीब दीवाना है, दास गरीब दीवाना है, सतगुरु को कुर्बाना है, सतगुरु को कुर्बाना है। अब क्या बताते हैं, ये मन जो है सत साधना पर नहीं लगता, और उल्टा मार्ग इसने बता दिया, कितना ही कठिन परिश्रम करवा ले ये कर लेता है। आपको ऐसा नाम मिला है, ऐसी भक्ति मिली है जो शास्त्रों प्रमाणित है, गीता आदि सभी सदग्रंथों में और सुख सबसंवेद संतों की अमर वाणी में यही प्रमाण है कि काम करते करते परमात्मा की भक्ति करनी है, अपने दैनिक क्रिया को करना भी है, साथ में प्रभु को याद करना है। कैसे करना है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जाग बे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। जैसे कोई कहता है भी मैं तो सर्विस करता हूं, नौकरी करता हूं, बैंक में सर्विस करता हूं, बहुत काम रहता है ऐसे ऐसे सारा दिन। कितना समय करते हो? 8 घंटे। दिन रात में कितने घंटे हैं? 24 घंटे। कितना घंटा सोना चाहते हो? 6 घंटे। 8, 6, 14, 10 घंटे। फिर 2-4 घंटे आप निकाल दो भाई अपने नान दोनों में, घूमन फिरन में और बाकी कह रहेगी 6 घंटे। तो आपको कैसे समय मिलेगा? जैसे जो भगवान के नाम पर नहीं लगे हैं उन कर्मचारी अधिकारियों की दैनिक चर्या देखना, क्या क्या करते हैं। शेष समय में क्लबों में जाते हैं, किधर गुट्टी लाते हैं, किधर गप्पे मारते हैं, टेलीफोन पर घंटों तक पता नहीं क्या क्या बतलाते रहते हैं, फिर शतरंज खेलते हैं, फिर कभी ताश खेलते हैं, किधर गप्पे बाण चल मित्र से मिलकर आते हैं। वो समय सदुपयोग कर सकते हैं। आप डेली पसंदर हैं, घर से चले, बस में बैठ गए, ट्रेन में बैठे, अपना रस्ते में मंत्र कर ले, रस्ते में अपना नितनेम कर ले, आते समय आरती कर ले, मंत्र भगवान ने याद रखा है उसका नाम जाप करता रहो जो आपको दे रखा है, पैदल चले कहीं जाना हो वहां कर ले। ऐसे ही किसान है, दुकानदार है, उसके पास बहुत समय है, घूमने फिरने जाजब कर ले, दुकान पर ग्राहक ना हो जो बैठ के कर ले अपना। बहुत तरीके हैं, हम उस जो सिनेमा देख देख कर दो दो घंटे बर्बाद कर देते हैं, उस समय का सदुपयोग करके हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। तो नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से तिलागवे, इस प्रकार हम परमात्मा की साधना करनी चाहिए। और मन इसी कभी परमात्मा की कृपा से ही रुकता है और कोई जड़ी नहीं इसको रोकने की। गीता जी में अर्जुन ने पूछा है कि भगवान आप तो कहते हो कि मन रोक कर साधना करें, और मन को रोकना तो मैं पवन के रोकने के तुल्य मानता हूं। अर्थ भगवान ने भी कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उसके लिए कहा कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर फिर वो जो साधना बताता है उसमें फिर अपनी साधना से करके आप अपना मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। फिर ये मन, इस मन को हम कैसे रोकेंगे? इस मन को ऐसे रोकेंगे, एक संत था, सिद्ध पुरुष था, उसने अपने एक शिष्य से एक सिद्धि करवा दी। उसे कहा कि यह सिद्धि तुझे हो चुकी है, लेकिन इस सिद्धि को मेरी अब्सेंस में, मेरी अनुपस्थिति में इसका प्रयोग मत करना। उसने सोचा ठीक है, गुरु जी एक दिन चले गए कि तक घूमन फिरन, शाम तक ना आए। उसने सोचा जो सिद्धि मैंने की है, गुरु जी ने कहा तू सिद्ध हो गया है, अपने देख तो लूं, परीक्षा कर लेता हूं। उसने अपना वो मंत्र बोल दिया और उससे एक जिंद आ गया, जिंद भूख भूत। उस जिंद ने कहा कि मेरी शर्त सुन ले बाबा जी, या तो मुझे काम लगाए रखना नहीं तेरी गर्दन दबा दूंगा। मुझे फुर्सत मिली, मेरे को तूने निश्चल छोड़ दिया बिना काम के, तो मैं तुझे मारूंगा। बाबा जी ने सोची भाई तो अच्छा पंगा पड़ा वो बच्चे ने, शिष्य ने कहा कि जाओ आटा मांग के लाओ। वो आटा मांग लिया, 2 मिनट में आ गया। कहा लकड़ी लाओ, लकड़ी लिया, नमक लाओ, फिर मिर्च लाओ। उसने खूब अंडा लिया, वो सारे काम नमटन न हो लिया। उन्हें सोचा ही मारेगा, अब क्या कहूं, तो 1 मिनट में ला रखता है। अब उसका पसीने आ रहे, गुरु जी ने याद करे, गुरु जी आओ कित गए मत मर गया। इतने में वो बाबा जी आ गए, उसके गुरु जी उनको देखकर भाग के चरणों में पड़ गया, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, ये जंद मारेगा जंद मारेगा। गुरुजी ने कहा कि क्या तूने वो सिद्धि प्रयोग कर ली? अकान जी वह सिद्धि प्रयोग कर ली, नालायक तन बहुत गलती करी, पर एक काम कर, इसको कह कि एक लंबा बांस लावे। उसने कहा जा एक लंबा बांस ला। वो लंबा बांस ले आया। गुरुजी ने कहा कि इसने कह दे धरती में गाड़ दे इसको खड़ा स्ट्रेट। उसने कहा कि इसको धरती में गाड़, उसने गाड़ दिया। तब गुरुजी ने कहा इसको कह दे इस पर चढ़ उतरे, जब मुझे जरूरत होगी बुला लूंगा ना, अपने इस पर चढ़े दर उतरेगा। तो उसने ऐसा ही किया। तो ये मन जो है ये एक जंद है, ये एक भूत है। परमात्मा ने हमें एक राम नाम का बांस दे दिया, यू गडवा दिया इससे द्वारा। जब अपना संसारी काम करे नहीं तो इसने बांस पचड़ डाले, सुमन के ऊपर लाए रखा है, नहीं तो ठाली होते हैं बकवाद गड़ेगा, चल सिनेमा देखा उड़ा टांग तुड़वा ले की तरह। हाँ चल वहां चले, क्यों नियम टूट जाएगा, नियम टूट गया तो कोई काल का दाव लग जाएगा और तुम्हारी छात आ जाएगी। परमात्मा कहते मन कमते ना चालिए, मन है पक्का दूत, ले डोबे दरिया में फिर जा हाथ से छूट, सत साही कर जोरू विनती करूं, धरूं चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश, कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बोत किए, करत न मानी और, भावे बंदा बख्श दियो, भावे गर्दन उतार। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाई, तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समां, अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे, भावे बंदा बख्श दियो, भावे गर्दन उतारे। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूं, बोर पिता को लाज, मैं अपराधी जन्म का, नक्षक बरे विकारे, तुम दाता दुखे भंजना, मेरी करो संभारे। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जाखे चो जाऊं, तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं।